यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए।
ओम शांति। हम सब भाग्यवान आत्माएं हैं जिन आत्माओं को इस मधुबन धरा में इस अव्यक्त मास में 18 जनवरी जो विशेष स्मृति सो समर्थि दिवस है ऐसे समय पर यहां हम सब भगवान से मिलन मनाने पहुंच गए। वैसे तो कभी बाबा से मिलन मनाने आओ सदा ही भाग्य है, लेकिन यह जनवरी मास विशेष स्पेशल मास है। इस महीने को भगवान का वरदान है कि आत्मा जो चाहे सो बाप से ले सकती है, वरदान प्राप्त कर सकती है, सहज रूप में प्राप्त कर सकती है। जैसे लौकिक दुनिया में कोई स्पेशल दिन होता है तो गवर्नमेंट भी कुछ स्पेशल काम करती है, जैसे 26 जनवरी या कोई भी स्पेशल डे होता है। तो ऐसे ये स्पेशल मास है, इसमें बाप भी बच्चों की स्पेशल खातिरी कर रहा है। तो ये तो आत्मा का विशेष भाग्य कि ऐसे समय पर पहुंचे हैं। बाबा इस महीने के लिए विशेष इशारा दिया है कि ब्रह्मा बाप समान आकारी फरिश्ता रूपधारी बनकर रहो। यह शब्द भगवान का वरदान बन जाएगा अगर थोड़ा अटेंशन देकर रहें तो। प्रश्न है कि फरिश्ता स्वरूप की स्थिति सदा क्यों नहीं रहती है? सुनते तो हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन क्यों नहीं रहती है? इसका छोटा सा कारण है कि ब्रह्मा बाप को पूरा फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि अपने सामने एग्जाम्पल फरिश्ता रूपधारी ब्रह्मा बाप है। तो कैसे फरिश्ता बना वो हम आत्माएं ब्रह्मा बाप को प्रैक्टिकल कर्म में फॉलो नहीं कर पाते। क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं? कोई किसी को तब फॉलो करता है जब उसका उससे प्यार होता है, स्नेह होता है, तब फॉलो करना सहज होता है। स्नेह के आगे कोई कुर्बानी करना भी मुश्किल नहीं है। स्नेह जुटने का आधार है प्राप्ति। प्राप्ति के बिना स्नेह जुटता नहीं है। अगर आप शिव बाबा से स्नेह जोड़ने का पुरुषार्थ करते हो तो क्यों करते हो? प्राप्ति होती है इसलिए। अगर प्राप्ति नहीं होती कहीं भी, वहां स्नेह जा नहीं सकता। तो ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा बाप से प्राप्ति क्या है, ये स्पष्ट नॉलेज न होने के कारण ब्रह्मा बाप से स्नेह जुट नहीं पाता है। बस ब्रह्मा बाप के बारे में इतना जानते हैं कि भगवान ने इस रथ का आधार लेकर हमको पढ़ाया है या पढ़ा रहा है। मीडियम है, सिर्फ इतना समझते हैं बस। लेकिन ब्रह्मा बाप से हम ब्राह्मण आत्माओं को उतना ही प्राप्ति है जितना शिव बाबा से। कई बच्चे ब्रह्मा बाप को साधारण समझकर ब्रह्मा बाप की कदर नहीं करते। वो रिगार्ड ब्रह्मा बाप के प्रति नहीं रहता है, स्नेह नहीं जाता है। लेकिन शिव बाबा ने स्पष्ट मुरलियों के द्वारा बता दिया है कि ब्रह्मा बाप से प्राप्तियां शिव बाप के समान ही है। क्या क्या प्राप्ति ब्रह्मा बाप से है और क्या प्राप्ति शिव बाप से है, वो आपको कंट्रास्ट में बता रहे कि शिव बाबा से क्या मिलता है और ब्रह्मा बाबा से क्या मिलता है। शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों बाप हैं। शिव बाबा आत्माओं का बाप है और ब्रह्मा बाप ब्राह्मणों का बाप है। दोनों बाप हैं। तो बाप माना वर्षा, शिव बाप आपको अस्सियो बाप से आत्मा को 21 जन्मों का वर्षा मिलता है और ब्रह्मा बाप से ब्राह्मणों को क्या प्राप्त होता है? आत्मा को तो 21 जन्म का वर्षा शिव बाबा से मिला और ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से, अगर बाप अलौकिक है तो वर्षा भी अलौकिक है। क्या वर्षा मिलता है? ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से, ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत बनने का वर्षा ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से मिलता है। संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत। ब्रह्मा बाप कैसे चारों स्टेज को प्राप्त किया है? फॉलो फादर, ये ब्रह्मा बाप से मिलता है। दूसरी बात, शिव बाप वरदाता है, हम आत्माओं को वरदान देता है और ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता है। भाग्य बांटने का काम ब्रह्मा बाप का है। तो शिव बाबा वरदाता है और ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता है। शिव बाबा प्यार का सागर है और ब्रह्मा बाबा क्या है? शिव बाबा प्यार का सागर है और ब्रह्मा बाबा रूहानी ममता की मूरत है। ब्रह्मा बाबा रूहानी ममता की मूरत है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा क्या है? शिव बाबा ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा बाबा अनुभवी है। शिव बाबा अनुभवी नहीं है, ज्ञान का सागर है, लेकिन ब्रह्मा बाबा अनुभवी है। जैसे शिव बाबा कहता है कि बच्चे तुम तो असल में हो ही आत्मा, तुमको तो आत्म अभिमानी बनने में कोई मेहनत होनी नहीं चाहिए क्योंकि हो ही आत्मा। अब शिव बाबा को ये शब्द कहना बड़ा सहज है क्योंकि कभी शरीर लेता ही नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी बनने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये ब्रह्मा बाबा जानता है। शिव बाबा ये जानता है कि मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यह नहीं जानता कि किस प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है। तो अनुभवी ब्रह्मा बाबा है। चलो शिव बाबा के पास। शांति। शिव बाबा हम सब आत्माओं का बाप है और ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा माँ है। शिव बाबा बाप है, ब्रह्मा माँ है। माँ और बाप दोनों में अंतर है या नहीं? अभी दो तीन दिन पहले मुरली चली थी, बाबा ने कहा था बच्चे तो दोनों के हैं, ब्रह्मा के भी और शिव के भी, लेकिन साकार में मां बच्चों की पालना करती है, इसलिए मां का प्यार बच्चों से ज्यादा होता है। तो मां का प्यार बच्चों से ज्यादा है, उसकी निशानी है कि जब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आपस में रूह रिहान करते हैं, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहता है कि बाबा मुझे आप चाबी दे दो, मैं बच्चों को अभी संपूर्ण बना दूं, बच्चों की कमी मेरे से देखी नहीं जाती है। अब बच्चे दोनों के हैं, लेकिन ब्रह्मा मां को ही संकल्प क्यों उठता है? क्योंकि मां है। इसके बाद देखो, ब्रह्मा मां होने के कारण जिन बच्चों का ब्रह्मा मां से विशेष स्नेह है, उन बच्चों को ब्रह्मा मां अमृत बेले वतन में आकारी रूप में इमर्ज कर इष्ट्रा सकाश देती है, इष्ट्रा बल भरती है, जिससे वो आत्मा बलवान बनती जाती है। यह ब्रह्मा मां विशेष खातरी स्नेही बच्चों की करती है। इसके बाद देखो, कई बच्चे कहते हैं कि मेरा कनेक्शन शिव बाबा से है, शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा भी लेता है, ऐसे बच्चों को शिव बाबा कहता है। दो दिन पहले मुरली में था कि ऐसे बच्चे जो ब्रह्मा बाप को मानते ही नहीं, वो तो दुर्गति को प्राप्त होते। शिव बाबा कहता है अगर ब्रह्मा बाप से कनेक्शन नहीं तो तुम्हारा देवता बनने से भी कनेक्शन नहीं। देवता बन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता है, आत्मा सो देवता नहीं है। आत्मा तो सारे संसार की आत्माएं शिव बाबा की संतान है। सब आत्माएं देव आत्मा नहीं बनेंगी, सिर्फ ब्राह्मण आत्मा ही देव आत्मा बनेगी। ब्रह्मा बाबा के बिना शिव बाबा से प्राप्ति हो नहीं सकती। जैसे बाबा ने एक उदाहरण दिया था, आप लोगों ने बैंक में लॉकर्स देखा होगा या सुना होगा। लॉकर्स में आप अपनी प्रॉपर्टी ले जाकर के रखते हो, क्या है बैंक वाले को पता नहीं है, सिर्फ आपको मालूम है। लेकिन उस लॉकर्स की विशेषता है, उसकी दो चाबी होती है। एक चाबी बैंक वाले के पास रहती है, एक चाबी आपके पास रहती है। जब आप अपना खजाना लेने जाओगे तो आप अपनी भी चाबी लगाओगे और बैंक वाला भी चाबी लगाएगा, तब आपको खजाना मिलेगा। भल आपका खजाना है, लेकिन अगर बैंक वाला चाबी ना दे तो आपका खजाना होते हुए भी, आपके पास चाबी होते हुए भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही शिव बाबा की प्रॉपर्टी सो आपकी प्रॉपर्टी, बर्थ राइट है। चाबी भी आपके पास है, मेरा बाबा ये खजाने की प्राप्ति की चाबी है। लेकिन जब तक ब्रह्मा की दूसरी चाबी नहीं लगेगी, तब तक शिव बाबा का खजाना सो आपका खजाना होते हुए भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा बाप से आत्माओं को उतनी प्राप्ति है जितनी शिव बाप से है। इस प्राप्ति को स्मृति में लाओ, तब ब्रह्मा बाप से आपका स्नेह जुटेगा और उस स्नेह के आधार से फॉलो फादर करना सहज होगा। तो अभी 31 तारीख की मुरली में बाबा ने इशारा दिया कि अपने पूर्व संस्कारों को योग अग्नि के द्वारा भस्म करो, क्योंकि बाबा ने जो बच्चों का चार्ट देखा, यही कि पुरानी दुनिया की आकर्षण कम हुई है, संबंधों की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार समय प्रति समय वार करते रहते। तो बाबा ने कहा इन पुराने संस्कारों को खत्म करो। किस विधि से? योग अग्नि के द्वारा। बाबा ने कहा अभी तक बच्चे योग लगाते भी हैं, बाप से प्यार भी है, शक्ति लेने का पुरुषार्थ भी करते हैं, योग पर अटेंशन भी है, लेकिन योग अग्नि का रूप नहीं ले रहा है, जिससे आपके पूर्व संस्कार भस्म हो जाए। तो योग अग्नि का रूप कैसे ले, उसका आधार बाबा ने बताया था एकाग्रता। जब आप बाप में एकाग्र हो जाओ, तब उस एकाग्रता की शक्ति से आपके विकर्म भस्म हो, पूर्व संस्कार भस्म हो। जैसे उदाहरण देते हैं, सूर्य की किरणों को लेंस शीशा पे एकाग्र करो तब कागज जलता है, तब अग्नि पैदा होती है। नहीं तो ऐसे किरणें बिखर रही हैं, आग नहीं बन रही। तो जब तक एकाग्रता नहीं आएगी तब तक योग अग्नि का रूप नहीं लेगा, तब तक पुराने संस्कार भस्म नहीं होंगे। अब ब्रह्मा बाप का योग अग्नि का रूप कैसे लिया, अर्थात ब्रह्मा बाप का योग एकाग्रता वाला कैसे बना? क्योंकि 63 जन्म के संस्कार तो ब्रह्मा बाप में भी तो थे, उसने भी तो तपस्या करके अपने संस्कारों को परिवर्तन किया, दिव्य बनाया, शुद्ध बनाया, शिव बाप समान बनाया। तो किस आधार से एकाग्रता रही? एकाग्रता का आधार और उस आधार से प्राप्तियां क्या हैं वो आपको बताते हैं। क्योंकि 3 मास का बाबा ने समय दिया है, इस 3 मास के अंदर पुराने संस्कार इमर्ज ना हो, अगर हुए तो बाप मानेगा नहीं, अब इशारा दे दिया है। तो संस्कार भस्म हो जाए, पूर्व संस्कार एकाग्र रहे मन, तो एकाग्रता का आधार है 5 बातें। उन 5 बातों को प्रैक्टिकल लाओ तब आपकी एकाग्रता बढ़ना शुरू होगी। पहली बात है एकांत प्रिय, एकांत प्रिय बनो। दूसरी बात है एक नामी बनो। तीसरी बात है एकानामी बनो। चौथी बात है एक से ही सर्व संबंध हो। और 5वीं बात है एक आस एक बल एक भरोसा हो। यह पांच बातें अगर पक्की हों, तब आप एकाग्रता की मंजिल पर बढ़ सकते। पहली बात, एकांत प्रिय। एकांत प्रिय का अर्थ क्या है? कई बच्चे समझते हैं कि सबसे किनारा करके एक जगह बैठना वो एकांत है, इसको एकांत नहीं कहा जाता है। एकांत का अर्थ है एक अंत, एक के अंत में रहो, अंत अर्थात उसके आगे और कुछ है ही नहीं, बस उसी में रहो। तो एक कौन? एक मैं आत्मा और एक मेरा बाबा, इसमें रहो। एक मैं आत्मा और एक मेरा बाबा, इन दो बातों में सदा रहने के लिए अंतर्मुखता आवश्यक है। या ऐसे कहें, अगर इन दो बातों में रहेंगे तो अंतर्मुखी बन जाएंगे। एक के अंत में रहो, उससे आगे नहीं बढ़ो। जैसे मैं आत्मा हूं, अब आत्मा के बारे में ही सोचो, इससे आगे नहीं बढ़ो। चाहे मैं आत्मा परम धाम में थी तो कैसी थी, स्वर्ग में थी तो कैसी थी, द्वापर से पार्ट बजाया तो भी मुझ आत्मा का क्या पार्ट रहा, या इस समय संगम युग पर मुझ आत्मा का क्या पार्ट है। आत्मा पर ही सोचो, कुछ भी सोचो आत्मा पर, इसके आगे नहीं बढ़ो। देह के बारे में नहीं सोचो, देह से संबंधित के बारे में नहीं सोचो। जिसको भी सोचो, जहां भी सोचो आत्मा। एक के अंत में रहो, उससे आगे नहीं जाओ। और बाप के अंत में रहो, अर्थात बाप के अलावा और कोई दूसरा नहीं। बाप, बाप के द्वारा प्राप्त ज्ञान और बाप के द्वारा दी हुई सेवा, इसमें रहो। इसको कहा जाता है एकांत। चाहे बैठ करके, चाहे कर्म करते हुए, एकांत में रहो। इसके प्रिय बनो, देह भान के प्रिय नहीं बनो। जिसको कहा जाता है आत्म प्रिय बनो, एकांत प्रिय। दूसरी बात है एक नामी। एक नामी का बड़ा सुंदर अर्थ है कि अंदर सदा यह संकल्प रहे कि सदा एक का ही नाम हो। चाहे मैं देख रही हूं, अंदर से हो इस आत्मा के द्वारा या इस नयनों के द्वारा बाबा दिखाई पड़े। जो मैं कर्म कर रही हूं, अंदर लक्ष्य हो कि इस कर्म को करते हुए देखकर मीठे बाबा की एक की याद आए, उसकी याद आए, खुद भी एक के नाम में रहो और आपको जो देखे उसको भी एक का ही नाम याद आए। आप गायब रहो, आपको अपनेपन का भान न आए कि मेरा नाम हो जाए मैं भी दिखाई पड़ूं, नहीं, एक नामी, एक का ही नाम हो आप में भी और आपके द्वारा भी। इसको कहा जाता है एक नामी। फिर है एका नामी। एका नामी का अर्थ है व्यर्थ से बचो, समर्थ को लुटाओ। एका नामी का अर्थ नहीं कि संकल्प बचा के रखे रहो, नहीं, खर्च करो लेकिन श्रेष्ठता में, फ्राक दिल बनो, व्यर्थ में नहीं जाने दो, समर्थ संकल्प क्रिएट करो। उसको कहा जाता है एका नामी। जैसे आपको अनुभव होगा किसी को आप ज्ञान सुना रहे हो, आपकी स्थिति समर्थ नहीं है, आप उसको आधा घंटा एक पॉइंट पर घुमा घुमा करके समझाओगे, शायद उसकी बुद्धि में बैठे। आप बाबा की याद में स्थित हो करके वही शब्द उसको सुनाओ, समर्थ शब्द होगा, थोड़े में ही उसकी बुद्धि में बैठ जाएगा। इसको कहा जाता है एका नामी करना। जहां थोड़े में काम चल सकता है क्यों ज्यादा खर्चा करो, अपनी स्थिति समर्थ बनाओ, थोड़े में काम चल जाएगा। एका नामी, और एक से ही सर्व संबंध। बुद्धि तो संबंधों में ही जाती है। इसका बड़ा सुंदर आधार है, एक से ही सर्व संबंध रहे, सहज भी है, थोड़ा सा बुद्धि पर जोर देकर सोचो कि मुझ आत्मा के दो संबंधी हैं, एक इस शरीर के संबंधी, माता पिता बहन बंधु जो भी हैं, एक है मुझ आत्मा का संबंधी। तो मुझ आत्मा का संबंधी शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा है, माता पिता है, वही मेरा माता पिता गुरु सखा साजन सजनी सब है। एक से सर्व संबंध। जितना स्वयं को आत्मक स्मृति में लाते जाएंगे उतना एक से संबंध जुटता जाएगा। देह की स्मृति देह के संबंध की तरफ ले जाएगी, आत्मक स्मृति आत्मा के संबंध की तरफ ले जाएगी। स्पष्ट बात है, दो संबंध हैं, एक शरीर के एक आत्मा के। तो जब हम हैं ही आत्मा तो मेरा सर्व संबंधी बाबा है। सर्व संबंध एक से, और फिर एक आस, एक बल, एक भरोसा। एक से ही आस रखनी है, सर्व प्राप्तियों की, किसी का कोई सहारा नहीं, एक का सहारा, एक से ही आस रखो, कुछ भी है, चाहे लेना है चाहे कुछ भी है, एक आस और एक ही बल का भरोसा हो। सर्व समर्थ एक बाप है, उसी के ही बल का भरोसा हो और किसी का भरोसा नहीं। एक आस और एक ही बल का भरोसा हो, सहारा। जब यह अंदर से पक्का हो, फिर आपकी एकाग्रता की नींव मजबूत होती जाएगी। फाउंडेशन मजबूत है, फिर आगे बिल्डिंग बनना सहज है और बिल्डिंग अच्छी बनेगी। ये पांच बातें पक्का करो, फिर एकाग्रता की तरफ आप बढ़ो। एकाग्रता की भी तीन स्टेजेस हैं। एकाग्रता की तीन स्टेजेस हैं, एकाग्र, एक टिक और एकाग्रचित। एकाग्र, एक टिक और एकाग्रचित, ये तीन स्टेजेस को पार करना है। एकाग्रता बढ़ाने में पहली स्टेज है स्वयं को बाप के आगे सदा एकाग्र रखो। या तो आप बाप के आगे रहो, या तो स्वयं को बाप के आगे रखो। ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो, सदा सामने रहने का साधन है कि बाप के द्वारा जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान के रमण में रहो, उस ज्ञान के चिंतन में रहो। बाप के द्वारा जो टाइटल मिली है उस टाइटल के बारे में सोचो, सम्मान के बारे में सोचो, प्राप्तियों के बारे में सोचो। सदा एक के आगे ही रहोगे। जब मन खाली होता है तब एक के आगे छोड़कर दूसरे के आगे जाता है। कहा ही गया खाली मन शैतान का घर। इसलिए मन को सदा एक के आगे रखो। चाहे आप बाबा के आगे रहो, चाहे बाबा को अपने आगे रखो। एकाग्र, जब आत्मा एकाग्र हुई तो एकाग्रता के बाद एक टिक स्थित हो जाना सहज हो जाएगा। बस यही, दिल कहे बाबा तुम्हें देखती रहूं, वो सुख शक्ति किरणें लेते रहो, उसके अलावा कहीं मन इधर उधर जाने का संकल्प ही ना आए। इतना सुख, इतना प्यार, प्रेम, शक्तियां, अतीन्द्रिय सुख लेते रहो। एक टिक, टिकने का अभ्यास करो। इसके बाद जब यह स्थिति आ जाएगी फिर सबसे टॉप की स्टेज है एकाग्र चित्त। चित्त शब्द इसलिए कहा गया है, चित्त शब्द बड़ा सूक्ष्म है। संकल्प तो चलते रहते हैं लेकिन चित्त उसे कहा जाता है जो कोई बात कब हो गई है, अभी आपके ध्यान में नहीं है लेकिन जब समय प्रमाण वो बात का वायुमंडल बनता है तो वो याद आ जाती है। जिसको कहते हैं ये बात तो मेरे मन में चित्त में भी नहीं थी, पता नहीं कहां से आ गई। अर्थात जो सूक्ष्म रूप से भी आत्मा में जो पूर्व संस्कार भरे हुए हैं वो भी एक टिक होने के कारण वो संस्कार खत्म हो जाएंगे, फिर आत्मा एकाग्र चित्त स्थित हो जाएगी। और ऐसे एकाग्र चित्त वाली आत्मा अपने संस्कारों को सहज ही संस्कार करके स्वयं को ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूपधारी दिव्य रूपधारी सहज बन जाएगी, जो आत्मा का लक्ष्य है और बाप की श्रीमत है। अच्छा, ओम शांति।